ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी से एक बार बोलेंगे ओम शांति। मैं समझती हूँ आप सभी इस पवित्र वातावरण में, इस सुंदर प्रकृति में बड़ा आनंद ले रहे होंगे। खुश हैं सभी? खुश हैं? यहां से जाने की दिल होती है? नहीं? फिर घर वाले क्या कहेंगे, 3 दिन के लिए तो भेजा था। हाँ, तो इतना सुंदर ये वातावरण जो हमारे तन मन को स्वस्थ कर देता और सचमुच जीवन हमारा परिवर्तन हो जाता। अभी हम सब सुजाता बहन से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत प्यार से सभी एक्सरसाइज कर रहे थे। और जब वो फिजिकल एक्सरसाइज करते कितने जागृत रहते हैं हम, क्योंकि हम तन के प्रति बड़े अवेयर हैं, इसलिए उसकी एक्सरसाइज करते समय बड़े अवेयर रहते हैं हम। ऐसा कौन है जिसने यहां पहली बार ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज की थी, जिंदगी में पहली बार हाथ पैर उठाए, कमर हिलाई? हाँ, कितने थे ऐसे? हाँ। और जब पहली बार एक्सरसाइज की तो क्या हुआ? हाँ, पहली बार जब एक्सरसाइज की, शरीर की एक्सरसाइज की, तो तकलीफ हुई या नहीं हुई? हाँ, हाँ या ना? तकलीफ हुई ना? पहली बार कोई भी जब कार्य किया जाता है तो तन को भी तकलीफ होती है। ऐसे राजयोग मेडिटेशन ये एक मन और बुद्धि की प्रक्रिया है, और जब हम फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करते हैं तो मन को भी चूंकि ठिकाना पता नहीं है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज हम राजयोग के क्या विधि है, क्या आधार है, कैसे राजयोग किया जाए, उसके विषय में समझेंगे। पिछले सत्र में हमने आत्मा के अस्तित्व को पहचाना, स्वयं के अस्तित्व को पहचाना, परमात्मा के अस्तित्व को पहचाना। आज हम कैसे उसके साथ अपना संबंध स्थापित करें, उस विधि को जानेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरी क्षमताओं का विकास हो, मेरी योग्यताओं का विकास हो, और ये सब कुछ हमें करना है, परंतु अपने पथ पर रहकर, अपने पथ से हटकर हमें नहीं करना है। राजयोग के अगर शुरुआती तौर पर देखें तो 3 स्तर हैं, जिसमें हम अगर फिजिकल तौर पर देखें, मानसिक तौर पर देखें और आध्यात्मिक तौर पर देखें कि कैसे राजयोग इन 3 स्तर पर कार्य करता है। जैसे कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं शरीर की फिटनेस के लिए, पर शरीर का स्वस्थ होना ही सब कुछ नहीं है। हम साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारी आत्मिक शक्ति का विकास हो, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो, हमारे मन की एकाग्रता बढ़े। क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत कौन सी होती है? हाँ, कि मन जो है वो एकाग्र नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता है। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी वो एकाग्रता बढ़े। तो शारीरिक तौर पर हमें शरीर को स्वस्थ भी रखना है और साथ साथ अपनी इन योग्यताओं को भी विकसित करना है, आत्मा का शुद्धिकरण भी करना है। दूसरे रूप में अगर हम देखें मानसिक स्तर पर, क्योंकि आज किसी से भी आप मिलो तो मानव मन इतना कमजोर हो चुका है, हर छोटी बड़ी बात का प्रभाव उसके मन पर सबसे पहले पड़ता है। सेकंड सेकंड में मूड चेंज होते रहते हैं, किसी ने हंसाया तो हंस दिए, किसी ने, जोर से बोलो, है ना, रुलाया तो रो पड़े, किसी ने कहीं और कह दिया चलने को तो चल पड़े। तो हमारा अपने ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं, अपने मन बुद्धि पर तो कोई नियंत्रण रहा ही नहीं है। तो मानसिक तौर पर भी अगर देखें तो जीवन में प्रतिपल हर घड़ी कोई ना कोई घटनाएं हमारे साथ घटती रहती हैं, और उन घटनाओं का असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है, और इसलिए मनुष्य बहुत जल्दी कभी दुखी हो जाता है, कभी चिंता में आ जाता है, कभी भय में आ जाता है, भविष्य की चिंता सताने लगती है। तो ये जो प्रभाव मन के ऊपर पड़ने लगता है, उससे हमें बाहर निकालने में ये राजयोग बहुत बहुत मदद करता है। और तीसरा, अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर हम सबको अपनी स्वयं की जानकारी, हमारे अपने पिता परमात्मा की जानकारी, आध्यात्मिक तौर पर जब हम इस राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि शरीर और आत्मा का आपस में क्या संबंध है। ऐसे आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये सारी स्थितियों को हम बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं। और इसलिए तीनों स्तर पर राजयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब आप बताइए कि आप सब कभी ना कभी परमात्मा को याद करते ही हैं, करते हैं, भगवान को याद करते हैं? करते हैं? अच्छा, कब करते हैं भगवान को याद? असलियत बताना है, कब हम भगवान को याद करते हैं? जब परेशान हो जाते हैं। अच्छा, और कब याद करते हैं? हाँ जी, हाँ, और कब याद करते हैं? किसी चीज की जरूरत होती, कितने होशियार है ना हम लोग भी वैसे, हाँ, किसी चीज की जरूरत होती तब हम उसको याद करते हैं। और कब याद करते हैं? जब मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर याद करते हैं, उसके पहले कोई? अच्छा, और है ना, हमने अपने जीवन का या परमात्मा को याद करने का आधार क्या बना लिया? दुख होगा तो याद करूंगा, कोई भय होगा तो याद करूंगा, कोई चिंता होगी तो याद करूंगा, कुछ चाहिए होगा तो याद करूंगा, और बाकी के टाइम पे क्या करूंगा? बाकी के टाइम पे क्या करूंगा? मैं भी मस्त, आप भी मस्त, है ना? ये हमने असली आधार बना दी। पर राजयोग के ये आधार नहीं है, ये टेम्पररी है, ये परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, ये कोई असली प्राप्ति भी नहीं है। आज हम उस असलियत को जानेंगे। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, वो जरूर हमारी मदद करता है। आपने सुना होगा, बहुत पुरानी वो स्टोरी आपको याद होगी। कहते एक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को देख रहा था, पिछले कई समय की अपनी यात्रा को वो देख रहा था, और जब वो अपनी जीवन यात्रा को देख रहा था तो उस यात्रा में उसको नजर आता है कि कहीं कहीं जब मैं चलता हूं तो मुझे चार पैर के निशान दिखाई देते हैं, और कभी कभी मैं जब चलता हूं तो मुझे सिर्फ दो पैर के ही निशान दिखाई देते हैं। अब जब वो व्यक्ति बहुत गौर से अपनी यात्रा को देखता है कि कब उसको चार पैर के निशान दिखाई देते हैं और कब उसको दो पैर के निशान दिखाई देते हैं, तो बहुत गौर से जब वो यात्रा को देखता है तो उसको पता चलता है कि जब उसका सुख का समय था तो उसको चार पैर के निशान दिखाई दिए, और जब उसके दुख का समय होता है तब उसको दो पैर के निशान दिखाई दिए। तो वो भगवान को कहता है, भगवान ऐसा क्यों? सुख में तो सारी दुनिया साथ देती है और आप भी उस समय साथ देते हो, और दुख में तो मैं अकेला पड़ जाता हूं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होता। परमात्मा ने बहुत प्यार से उस बच्चे को समझाया, उस व्यक्ति को समझाया। जानते हो, जब आपके सुख के दिन होते हैं और आपको चार पैर के निशान दिखाई देते हैं, तो वो चार पैर में दो पैर आपके और दो पैर भगवान के होते हैं। लेकिन जब आपके दुख के दिन होते हैं और आपको दो पैर के निशान दिखाई देते हैं, तो उस समय मैं आपको अपनी गोदी में उठा लेता हूं, इसलिए आपको सिर्फ अपने ही दो पैर के निशान दिखाई देते हैं। उस समय मैं साथ चलता नहीं हूं, पर तुमको अपनी गोदी में उठा लेता हूं। यह उसके प्यार की निशानी, यह उसके प्यार का एहसास। पर आज हम समझेंगे कि योग मतलब क्या। योग अर्थात जोड़, संबंध, मिलन। जब दो चीजें आपस में मिलती है तो हम कहते हैं योग हो गया है। जैसे वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, संयोग का मतलब होता है अचानक किसी का मिलना, ऐसे ही राजयोग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। क्लियर हुआ? वियोग, संयोग, ये योग भी नहीं। आज हम अभ्यास करेंगे राज योग का, जिसमें हमारा मिलन किसी व्यक्ति के साथ नहीं, पर हमारा मिलन उस परमात्मा के साथ होता है। और एक तरह से देखा जाए तो जीवन में हर एक व्यक्ति योगी है, क्योंकि हमारा मन का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भौतिक चीजों को याद करते हैं, भौतिक पदार्थों को, वस्तुओं को याद करते हैं, तो उसको भौतिक योग कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, इंसान को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है लौकिक योग। पर जब हम किसी इष्ट को याद करते हैं, किसी देवी देवता को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, तब उसको कहा जाता है अलौकिक योग। लेकिन जब हम अपने स्व अस्तित्व के माध्यम से, निज स्वरूप के माध्यम से आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है राजयोग। तो एक है भौतिक योग, एक है लौकिक योग, एक है अलौकिक योग, लेकिन हम किस लिए आए हैं यहां? राजयोग सीखने के लिए। अभी भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे होंगे मन से, किसी ना किसी को याद कर रहे होंगे, लेकिन राजयोग में उन सब से अपने आप को समेटकर एक के प्रति पूरी एकाग्रता के साथ हमें बैठना होता है, इसलिए उसको कहते हैं राजयोग। राजयोग ये ऐसी सुंदर पद्धति है, इतना सुखद योग है कि राजयोग का अगर वास्तविक अर्थ हम जानते हैं तो राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनाने वाला योग, राजाओं का राजा। क्लियर हुआ? राजाओं का राजा। सबसे पहले हम देखें कि हमारे शरीर की जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं, इन सारी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली कौन? सुना है ना सबने? सुन रहे ना सभी? है ना, एक कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली कौन? कौन कंट्रोल करता है ना? ये आत्मा। ये ड्राइवर है जो हमारे पूरे शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है। आत्मा राजा है जो इस सीट पर बैठ करके शरीर के एक एक इंद्रियों को वो कंट्रोल करती, नियंत्रित करती है। तो पहले हम स्वयं की इंद्रियों के राजा बनते हैं, और जो स्वयं की इंद्रियों के राजा बनते हैं वही फिर भविष्य में महाराजा बनते, राजाओं के राजा बन जाते हैं। पर आजकल हम जब सुनते हैं लोगों की बातें कि क्या करें, मैं देखना तो नहीं चाहती थी पर मैंने देख लिया, मैं सुनना तो नहीं चाहती थी पर बातें ऐसी थी कि मैंने सुन ली, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी पर परिस्थिति ऐसी थी कि आखिर मुझे बोलना पड़ा, तो मेरे न चाहने पर भी मुझे करना पड़ा। इसको कंट्रोल कहेंगे या आउट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, है ना, इसको कंट्रोल नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती थी फिर भी मैंने कर दिया, मैं खाना नहीं चाहती थी खा लिया, देखना नहीं चाहती थी देख लिया, बोलना नहीं चाहती थी बोल दिया, अरे इतना समझाया था बोलना मत फिर बोल पड़े, तो इसको तो कंट्रोल नहीं कहेंगे। स्व पर शासन, बहुत बार ये शब्द सुने होंगे ना, यहां का ना प्रशासन ठीक नहीं है, यहां का ना प्रशासन ठीक नहीं है। राजयोग कहता है जिसका खुद पर शासन नहीं वो प्रशासन कैसे करेगा, है ना। औरों पर राज्य करने के लिए पहले मुझे स्वयं पर राज्य करना, स्वयं की इंद्रियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है राजयोग। हम स्व पर नियंत्रण पूरी तरह से कर पाते हैं, अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रूप से चला पाते हैं। और इस राजयोग को आप देखो तो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये मुख्य तो है राजयोग, लेकिन इसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है समझ। अब मुझे परमात्मा को याद करना है, अब याद कब कर सकूंगी, जब मुझे उसकी समझ होगी, उसकी नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। तो जब तक ज्ञान नहीं तब तक, आगे बोलो, है ना, जब तक ज्ञान नहीं जब तक समझ नहीं तब तक योग लग नहीं सकता। ऐसे इसको भक्ति योग भी कहा जाता है। भक्ति योग अर्थात ये एक भावनात्मक विषय है, भक्ति अर्थात एक भावना प्रधान विषय है। लेकिन फर्क पड़ गया है पहले की भक्ति और आज की भक्ति। मीरा का कृष्ण के साथ कितना प्यार था और कैसा प्यार था, मीरा का कृष्ण के साथ प्यार था, कैसा प्यार था, निस्वार्थ प्यार था, कुछ चाहना नहीं थी पर एक मन की लगन थी, दिल की लगन थी, निस्वार्थ प्यार था। और इसीलिए तो उसके लिए जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। आज ऐसा प्यार किसी का है, निस्वार्थ प्यार है, भगवान के प्रति है, इंसान के प्रति है, नहीं है, ऐसा प्यार है कहां। आजकल तो प्यार में स्वार्थ आ गया है और स्वार्थ में सौदा हो गया है, क्या आप मेरे लिए, आगे बोलो, आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ये स्वार्थ, लेन देन की भावना, ये सौदे की भावना, वो सच्ची प्रीत रही कहां। आप करोगे तो मैं करूंगा, हे भगवान इस बार परीक्षा में पास कर दोगे तो 11,000 एक नारियल ये वो प्रसाद, आप करोगे तो मैं करूंगा। तो फिर सच्ची प्रीत नहीं तो फिर सच्ची प्राप्ति भी होती नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है। तो भक्ति योग अर्थात परमात्मा के साथ हम कैसे निस्वार्थ रूप से जुड़ सकें, उसको याद कर सकें, और जिसने सिर्फ संबंध जोड़कर रखा है ऑटोमेटिक प्राप्तियां होती रहती है, होती रहती है। और फिर इसको कर्म योग भी कहा जाता है, राजयोग को कर्म योग भी कहा जाता है। सुना होगा आपने योगः कर्मेषु कौशलम्। योगी व्यक्ति का हर कर्म कैसा होता है, जागृत है ना सभी, योगी व्यक्ति का हर कर्म कैसा होता है, बड़ा कुशल होता है। योगः कर्मेषु कौशलम्। आजकल दुनिया में या तो कर्म चलता है और या तो योग चलता है, और ये समझा जाता है कि जब योग कर रहे हैं तो हम कर्म नहीं कर सकते, जब कर्म कर रहे हैं तो हम भगवान को याद नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट कर दिया है। जबकि राजयोग हमको सिखाता है कर्म और योग का संतुलन, और जब वो संतुलन बना करके चलते हैं तभी हमारे कर्म में कौशल कुशलता आती है। आप देखो संतुलन की बात आती है तो मुझे सर्कस याद आता है। सर्कस में एक व्यक्ति पतले से तार के ऊपर जब बैलेंस बना करके चलता है तो सबका ध्यान, देखने वाले सबका ध्यान उस चलने वाले व्यक्ति पर टिक जाता है, और नीचे बैठे बैठे जब उस तार पर चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं तो देखने वाले को भय होता है कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तार टूट ना जाए, पर चलने वाले को हाँ चलने वाले को भय होता है, भय होता तो चल नहीं पाता है ना? उसको अपना संतुलन पे पूरा विश्वास है कि मैं अपने संतुलन को खो नहीं सकता, तो जो नीचे बैठे सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। और आप देखो सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, कोई किसी को देखने वाला है, कोई किसी को देखने वाला भी नहीं, बल्कि एक दूसरे को टक्कर मार करके चल रहे हैं। अब कहां वो एक तार पर चलने वाले को हजारों देख रहे हैं और कहां हजारों चलने वालों को कोई देखने वाला नहीं, तो दोनों के चलने में अंतर कहां महसूस हुआ? हाँ, जो तार पे चल रहा है उसके कर्म में हमको क्या विशेषता दिखाई दे रही है, संतुलन दिखाई दे रहा है, कुशलता दिखाई दे रही है, आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, और इसलिए सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। और जमीन पर चलने वाले वो तो सब चल ही रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तन से भी भाग रहे हैं, मन से भी भाग रहे हैं, कोई किसी को देखने वाला नहीं, उनके कर्म में कोई कौशल दिखाई नहीं थे। तो राजयोग कहता है कर्म अलग योग अलग नहीं, लेकिन कर्म करते करते भी हम परमात्मा को याद कर सके, वो संतुलन होगा तो कर्म श्रेष्ठ, कर्म महान बन जाएगा, एक श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। ऐसे इस राजयोग को बुद्धि योग का टाइटल भी दिया जाता, बुद्धि योग। कि आज तक तो हम समझते थे कुछ विधि हमको करनी पड़ेगी, कुछ विधि करें तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़े। हम जनरली ये देखते हैं कि सब कुछ हम तन से कर रहे होते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए, परंतु मन और बुद्धि वो कहीं और खोया हुआ होता है। आपके सामने टीवी रखा हुआ है, बड़ी सी स्क्रीन है, और आप उस टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने जाकर के बैठ जाओ, और काफी समय तक बैठे रहो और कहो अरे इसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता है, टीवी खराब। सेकंड में क्या कह दिया, टीवी खराब। क्यों दिख नहीं रहा है, क्यों सुन नहीं रहा है, कहां हमने गड़बड़ की है, कहां गड़बड़ की है हमने। साधन सामने है, हम भी सामने बैठे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, कहां बीच में गैप है। हाँ हाँ, कनेक्शन नहीं जोड़ा है, स्विच ऑन नहीं किया है। अब स्विच ऑन नहीं किया, कनेक्शन नहीं जोड़ा आपने, तो कैसे दिखाई देगा, कैसे सुनाई देगा। बस ऐसे हम भी भगवान के सामने सिर्फ जाकर के बैठ जाते हैं, पर अपनी बुद्धि की तार उसके साथ जोड़ते नहीं हैं। और फिर हम कहते हैं भगवान से तो मुझे कोई प्राप्ति होती नहीं, कोई अनुभव जीवन में होते नहीं, तो कैसे होंगे। हमने अपने मन की तार तो उसके साथ जोड़ी नहीं। मनुष्य हाथ में माला लेकर के बैठा हो और मन यहां वहां भटकता हो तो क्या उसको ताकत आएगी। इसलिए सुना आपने, कहते हैं ना, माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा चहूं और फिरे, ये तो सिमरन नाही। समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, माला तो कर्मे फिरे, माला कहां फिर रही है, हाथ में, जीभ फिरे मुख माही, परमात्मा का नाम कहां घूम रहा है, मुख के अंदर घूम रहा है, मनवा अभी तो यही है ना, कि कहीं बाहर है। हाँ, कब छूटे बाहर जाए, ऐसा वाला तो मनवा नहीं है ना अभी। मनवा चाहूं और फिरे, ये तो सिमरन ना? फिर तो कितनी माला फेर लो, कितना ही नाम ले लो, ताकत कहां से आएगी। कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार जोड़ा नहीं। इसलिए बुद्धि योग, और जितना बुद्धि का संबंध हम उसके साथ करते हैं, तो जैसे कहा कर्म में कुशलता, विचारों में शक्ति, सब कुछ हमें प्राप्त होने लगता है। और ऐसे इस राजयोग को सन्यास योग भी कहा जाता है। जब सन्यास की बात आती है तो कईयों को लगता है पता नहीं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस डर से तो नहीं बैठे ना, इस डर से तो नहीं बैठे। किसी को है ऐसा कोई डर, अरे है ना यहां राजयोग सीखेंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे, खान पान चेंज करना पड़ेगा, घर परिवार चेंज करना पड़ेगा, कहीं जंगल में जाना पड़ेगा। नहीं, सन्यास का मतलब क्या, सन्यास का मतलब ये सब चीजों का त्याग नहीं। असली त्याग तो हम जीवन में कर ही नहीं पाते हैं, जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ नहीं पाते हैं, और जो नहीं छोड़ना है उसके डर से हम कुछ कर भी नहीं पाते। सन्यास मतलब आत्मा के अंदर कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार की कमियां हैं, कई प्रकार के अवगुण हैं, और जिसको हम बहुत समय से त्यागना चाहते हैं पर हमारे पास वो ताकत नहीं होती कि हम अपनी कमी को किसी के आगे समर्पित कर सके। परमात्मा एक ऐसी ऊंची ताकत, ऐसी ऊंची शक्ति है, जब हम अपने अंदर की सारी कमजोरी, सारी बुराइयां उसको अर्पित कर सकते। सन्यास मतलब अपने अंदर की बुराइयों का त्याग, सन्यास। एक योगी बनने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं। अगर सारे के सारे जंगल में चले जाएंगे तो क्या होगा, आवाज ही बंद हो जाएगी सा, है ना। सारे के सारे अगर जंगल में चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। हम जंगल में और जंगल वाले, अच्छा ऐसा, हम जंगल में चले जाएं तो जंगल में तो मंगल और घर खाली हो जाएंगे। राजयोग ये नहीं कहता कि आप घर परिवार का त्याग करो, आप कोई वस्त्र को चेंज करो, पर राजयोग सिखाता है अपनी अंदर की कमियों को त्यागो, अच्छाइयों को धारण करो। यह सही रूप से त्याग। पर जहां त्याग की बात आती इंसान घबराता है, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे दूसरा हिस्सा हम देखें कि क्या हमको मिलने वाला है, जितना मिलने वाला है उसके कंपैरिजन में देना तो बहुत कम होता है। और लास्ट इसको समत्व योग भी कहा जाता है। समत्व अर्थात जहां मन और बुद्धि का समन्वय होता है, संतुलन होता है, ऐसे राजयोग को बहुत सारे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। पर बात चल रही थी कि कैसे परमात्मा को याद किया जाए। अच्छा, एक पल के लिए सब आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद करके बैठो। कई तो सोच रहे होंगे पहले से ही बंद है, क्या बंद करें, है ना। जिसकी बंद है वो बंद रखो, जिसकी खुली है वो कुछ पल के लिए बंद कर लो, ओके। और कुछ क्षण आप अपने लौकिक घर में पहुंच जाओ, अपने माता पिता को सामने देखो, माता पिता से यहां के वातावरण की सुंदर सुंदर बातें करो, अनुभव शेयर करो, उनके साथ बहुत प्यार से मुलाकात करो। चालू है मुलाकात? अच्छा, अब कुछ पल के लिए मेरे घर चले जाओ, मेरे घर चले जाओ, संगीता बेन के घर चले जाओ, लौकिक घर चले जाओ। और संगीता बेन के लौकिक माता पिता से मुलाकात करो, बातचीत करो, यहां के अनुभव उनके साथ शेयर करो। अभी जरा आंखें खोलो। दोनों में से क्या इजी था? अपने घर जाना, अपने माता पिता से मिलना, उनके साथ बातचीत करना सहज था। क्यों सहज था उनके साथ मिलना, बातचीत करना, अनुभव शेयर करना? क्यों सहज था? हाँ, क्योंकि पहचानते हैं, उनके साथ संबंध है, है ना, उनके साथ रहते हैं, इसलिए सहज था। और मेरे घर जाना क्यों मुश्किल था? पता ही नहीं आप कहां रहते हो, कौन आपके माता पिता हैं, क्या करते हैं। बस ठीक इसी तरह से जब तक पहचान नहीं, परिचय नहीं, तब तक परमात्मा को याद करना भी मुश्किल होता। इसके पहले के सत्र में बहनों ने आपको परमात्मा का परिचय दिया, कौन हमारे असली माता पिता है, इस आत्मा के पिता, इस सोल के पिता सुप्रीम सोल है। और जब आपको उनका परिचय मिला, फिर उनके साथ कनेक्शन जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो याद करने के लिए चाहिए पहचान, परिचय। आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच, दोनों के रूप की भी समानता है, क्योंकि आत्मा का रूप भी कैसा है, सुना है ना सभी ने, कैसा है? ज्योति बिंदु। तो आत्मा के पिता परमात्मा का रूप भी कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। आत्मा का घर कौन सा है? परमधाम। परमात्मा का घर कौन सा है? परमधाम। तो दोनों के धाम की भी समानता है। आत्मा के गुण कौन से हैं? कौन से? रिवाइज करें ना, आपने पहले सुना है तो। आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। परमात्मा के गुण कौन से हैं? यही सब परमात्मा के भी गुण हैं। तो गुणों की भी समानता, पर वो सागर है, हम उसके स्वरूप हैं। नाम वो पिता शिव, हम हैं आत्माएं है। अब रूप की समानता, धाम की समानता, गुणों की समानता, जब हमको ये पहचान परिचय मिल जाता है तो परमात्मा को याद करना बड़ा सहज हो जाता है। परिचय के साथ साथ फिर चाहिए संबंध। संबंध, आज तक हम मंदिरों में जाकर, देवी देवताओं के आगे जाकर के क्या उनसे हम संबंध जोड़ते थे, क्या संबंध की बातें करते थे, क्या गायन गाते थे। मंदिरों में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उनके आगे, बोलो। सबने कहा है, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं कहा होगा, त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हमने संबंध जोड़े ना। अब ये गाया तो सही पर निभाया कितना? घर में आकर के ये संबंध निभाया कि सिर्फ वहां जाने तक, वहां गाने तक सीमित था, कहने तक सीमित था, लेकिन हमने उस संबंध को कभी निभा करके देखा? देखो, लौकिक में पिता पुत्र का संबंध हो, पिता बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, आज माता और बच्चे का संबंध है, बच्चा कहीं दूर दराज पढ़ रहा हो, हॉस्टल में पढ़ रहा हो, कहीं दूर रह रहा हो, विदेशों में रह रहा हो, तो माँ को कितना प्रतिपल अपने बच्चे की याद रहती है। इस समय मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पल पल उसकी याद रहती है। क्यों याद है, क्यों याद आ रही है? क्योंकि माँ का है ना उस बच्चे के साथ संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। तो हर कर्म के समय माँ इधर खा रही होगी खाना, उधर उसको याद आता होगा मेरा बेटा इस समय क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो संबंध है, कहना नहीं पड़ता है कि आप अपने बेटे को याद करो, पर लगातार वो माँ अपने बच्चे को कोई ना कोई कार्य के समय याद करती रहती, संबंध। ऐसे जब हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो हमें परमात्मा को याद करना भी आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। और तीसरा, जब संबंध है तो संबंध के साथ साथ चाहिए सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार। जो पहले भी कहा, प्यार कैसा हो? निस्वार्थ प्यार हो, सच्चा स्नेह। परमात्मा को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। कितनी ऊंची, कितनी महान शक्ति है जो सत्य भी है और सुंदर भी है, कल्याणकारी है, और उसके प्रति मेरा अगाढ़ स्नेह है क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत सहयोग दिया है, स्नेह है। तो जहां स्नेह की तार जुटती है वहां याद करना बड़ा आसान हो जाता है। कहते ना, याद में भी अलग अलग प्रकार की याद होती है। एक याद होती है, एक याद करना पड़ती है। कोई प्रसंग होता है तो एक एक को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। एक याद होती है आने वाली, एक की याद कैसी होती, जो याद आती है, एक याद करनी पड़ती है, एक याद सताती है कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता। पर आपको पता है परमात्मा की याद कैसी है? आने वाली है, करने वाली है, सताने वाली है, या इससे भी हटकर कोई और है? हाँ, कौन बताएगा? परमात्मा की याद कैसी है? परमात्मा की याद कैसी है? हाँ, महसूस करने के लिए परमात्मा की याद कैसी है? आप कहेंगे अभी करके देखूं तो मालूम पड़े ना, है ना? कैसी है? आने वाली है या परमात्मा को याद करना पड़ता है, या परमात्मा की याद आती है, या परमात्मा की याद सताती है, या इससे भी हटकर कोई और है? हाँ, कोई जवाब नहीं, कुछ तो बोलो। सताने वाली है, रियलाइजेशन वाली है, और परमात्मा की याद न आने वाली, न करने वाली, न सताने वाली, परमात्मा की याद तो समाने वाली है। कैसी है? समाने वाली। इसीलिए तो लोगों ने कह दिया है ना, हम परमात्मा में लीन हो जाएं। पर वास्तव में परमात्मा में लीन नहीं हुआ जाता है, उसके लव में लीन होना होता है, उसके प्यार में समाना होता है, उसमें समाना नहीं होता है। उसमें समा जाए तो अस्तित्व खत्म। तो उसमें समाते नहीं है, परंतु उसके लव में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, खो जाते हैं। जैसे दो व्यक्ति का जब आपस में संबंध जुड़ जाता है, उस एक कुमार और कुमारी आपस में जब संबंध जुड़ता है और पता चलता है कि अब भविष्य में इनके साथ मेरा संबंध पक्का होना है, तो वो कुमार कुमारी कैसे एक दूसरे की याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के साथ भी मेरा अनादि अविनाशी संबंध है, तो उसकी याद में मुझे क्या करना होता है? समाना, स्नेह में समाना। और चौथा है प्राप्ति। मन बार बार कहां जाता है? हमारा मन बार बार कहां दौड़ता है? जहां से कुछ मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। यहां आने का आपका मन क्यों हुआ? माउंट आबू आने का, ज्ञान सरोवर आने का मन क्यों हुआ आप सबका? हाँ, आपको पता था यहां बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको जिन्होंने भी तैयार किया होगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई होगी, आप चलो ये होगा, ये होगा, ये। तो आपका मन यहां आने के, ये होगा, ये मिलेगा, ये देखोगे, ये सुनोगे। तो जब प्राप्ति 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 देखी तो आप दौड़े चले आए। निमंत्रण तो बहुतों को दिया था, पर आप इतने ही पहुंचे, क्योंकि आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत भर में दिया था निमंत्रण, लेकिन आप सब क्यों पहुंचे? भगवान के घर में सिलेक्टेड रत्न, सिलेक्टेड फूल यहां पहुंचे अपनी खुशबू फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता था यहां आने के बाद हमें बहुत कुछ मिलने। तो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। सब अपनी झोली भर के जाने वाले हैं। झोली भरना, पर यहां झटकार मत देना, जो भरा है वो साथ में लेकर के जाना भी। तो जहां कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है, मन वहां बार बार जाता है, प्राप्ति में मन जाता है। और परमात्मा तो इतनी ऊंची पावर, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है? अरे इतना प्यार है, आज अगर उसको कहो आसमान का तारा तोड़ करके दे दो, तो वो भी हमको देने के लिए तैयार है। कहते ना, भगवान देता है तो क्या बात है। इसी में सबकी आवाज निकली, बाकी तो चुप थे। छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो लेता भी, ऐसा नहीं देता है छप्पर फाड़ के, पर लेता भी है। क्या लेता है? एक एक का गिन गिन के हिसाब भी लेता है। देता है तो छप्पर फाड़ के, लेता है तो फिर हिसाब बराबर लेता है। मैंने तुमको कान दिए थे, क्या सुना जिंदगी भर? मैंने तुमको मुख दिया था, क्या बोला जिंदगी भर? आंखें दी थी, क्या देखा? एक एक का हिसाब तो लेगा ना। इसीलिए जब हिसाब लेने का टाइम आता है तब घबराहट होती है, अभी मुझे हिसाब देना है, तब डर होता है। तो देता है तो बड़े प्यार से, हाँ, प्राप्ति ही प्राप्ति है। पर वो प्राप्ति कब? जब पहचान है, संबंध है, स्नेह है, उसके साथ जुड़ गए हैं, तब ऑटोमेटिक प्राप्तियां होने लगती है, मिलने लगता है। और इसीलिए परमात्मा को याद करने के ये आधार के साथ साथ कैसे उसको याद करें, और परमात्मा को याद करने के लिए दो प्रकार की तैयारी हमको करनी होती है। एक फिजिकली बाह्य तैयारी और दूसरा मेंटली मानसिक तैयारी, क्योंकि ईश्वर की याद ये एक बहुत बड़ी यात्रा है और उस यात्रा के लिए हमें तैयार करना पड़ता है अपने मन और बुद्धि को। अब बाह्य तैयारी में हमें क्या करना होता है ईश्वर को याद करने के लिए? बाह्य तैयारी में हमें अपने फिजिकल पोस्चर को बिल्कुल ठीक व्यवस्थित रखना होता है। अगर हम नीचे बैठे हैं तो हमें अपनी सुखासन की स्थिति में दोनों पांव को फोल्ड करके और इस तरह से हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी ब्लॉक है वो सारी एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है। ये पोजीशन है। और जब हम सोफे पे या कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए? अगर हम दोनों पैर को नीचे रखते हैं तो दोनों पैर सीधे नीचे रखना, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा गैप, और फिर कमर को सीधा, कंधों को सीधा, और अपने हाथ को इस तरह से रख करके एक योगी की पोजीशन में। आप देखो कहीं भी साधु सन्यासी महात्मा संत या कोई योगी जब तपस्या कर रहे होते ना तो ऐसे नहीं बैठे होते हैं, वो बड़े सीधे बैठे होते हैं। ये पोस्चर होता है तन को व्यवस्थित। कई बार हम देखते हैं ना लोग कुर्सी पर बैठते ना तो वो आधी कुर्सी पीछे से छोड़ देते हैं और आगे खिसक करके आधा बैठते ताकि शायद पीछे किसी और को बिठाना होगा, है ना। हमें पूरी तरह से अपने को कुर्सी मिली है तो आराम से स्थित होना है उस चेयर के ऊपर, दोनों पैर के बीच गैप और इस तरह से। तो हमारा फिजिकल पोस्चर भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि तन की स्थिरता के साथ साथ हमें मन को स्थिर करना है। पहले तन को स्थूल से हमें सूक्ष्म की ओर जाना है, क्योंकि आपने गीत सुना होगा ना, एक बहुत पुराना गीत है फिल्मी, तन डोले, जोर से बोलो, तन डोले मेरा मन डोले। अभी तो नहीं डोल रहा है ना, किसका तन मन डोल रहा है अभी? हाँ, तन डोले। अब तन ही डोल रहा हो तो मन तो पहले से ही डोल रहा है, भटक रहा है इधर उधर, हमको उसी को ही तो ठिकाने लगाना है। हाँ। तो पहले स्थूल रूप से अपने आप को तैयार करना है तन की स्थिरता, और फिर धीरे धीरे हमारे मन की एकाग्रता बाह्य स्वरूप से। और इसलिए हमें ध्यान रखना है इसकी विधि में 3P, इसकी विधि में 3P, प्रेजेंट में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और पर्सनल परमात्मा के साथ मुलाकात करना है। ये विधि है। इंसान या तो भविष्य का सोचता है या भूतकाल का सोचता है, पर वर्तमान में तो वो कभी जीता ही। तो मैं किस पर्पस से मेडिटेशन करने बैठी हूं, उस वर्तमान में स्थित होकर के, और फिर मुझे ध्यान करना है, प्रेजेंट में रहना है, न पास्ट न फ्यूचर, प्रेजेंट। और दूसरी विधि, आंख खोल करके परमात्मा को याद करना। अब तक जब भी किसी को ध्यान करने के लिए कहा जाता था, मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता था, तो वो क्या समझते थे? ध्यान कब लगेगा? आंख बंद। और आपको पता है आंख बंद होती है तो कहां चले जाते हैं? है ना? आंख बंद होती है तो ध्यान ध्यान नहीं होता है, पर हम निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। वो विधि नहीं, आंख खोल करके हमें ईश्वर का ध्यान करना, याद करना। आप कहेंगे तो नई बात है, आज तक तो आंख बंद करना बड़ा सहज, कुछ नहीं दिखाई देगा तो भगवान को याद करना आसान। लेकिन परमात्मा ने हमको क्या बनाया है? कर्म योगी, कर्म योगी। और कर्म कैसे किया जाता है? आंख बंद करके काम किया जाता है, आंख खोल करके। ऐसे चलते चलते कोई व्यक्ति ठोकर खा लेता है तो कहते हैं, क्यों आंख बंद करके चल रहे हो क्या? है ना, उनको ऐसे हम कह देते हैं, आंख बंद करके चल। तो चल भी रहे हैं, आंख खोल के चल रहे हैं, एकाग्रता के साथ चल। जो भी कर्म करेंगे हम आंख खोल करके करें, आंखें खुली हो और मन की तार परमात्मा के साथ जुड़ी हो। ये बहुत बड़ा एक आईना है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम घर से कभी मंदिर जाते हैं तो हम घर वालों को क्या कह करके जाते हैं? मैं कहां जा रहा हूं? मंदिर में किस लिए जाते हैं? मंदिर में किस लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए। और मंदिर में जाके क्या करते हैं? जब दर्शन का समय होता है तब क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। तो दर्शन कराने गए थे या करने गए थे? मतलब घर में तो हम क्या बोलकर गए? मैं दर्शन करने जा रहा हूं। और जब दर्शन करने का समय आया तब क्या किया? तो दर्शन कराया या किया? आंखें बंद कर ली उस समय? नहीं, आंखों से दर्शन किया जाता है। इसलिए कहते हैं, आपकी नजर पड़ी तो मैं नजर से निहाल हो गया, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। आपके ये जो नयन है, दया दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, ये दृष्टि में बहुत शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं शरीर के तीन पार्ट से एनर्जी फ्लो होती है, पहले से माना जाता है। इसलिए पहले के समय में जो साधु महात्मा या महापुरुष, जो भी ऐसे योगी तपस्वी होते थे, उनके चरण धोकर के पानी पीते थे, उसको क्या कहते थे? चरणामृत, कि उनकी पावर हमारे अंदर आएगी। इसलिए उसको बड़ा महत्व देते थे चरणामृत को, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो होती थी। दूसरी एनर्जी फ्लो होती है हाथों के माध्यम से। इसलिए जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। फिर क्या कहेंगे? बस आपका हाथ मेरे सिर पर रख दो, मेरी पीठ पर रख दो, आशीर्वाद दे दो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हाथों के द्वारा भी एनर्जी फ्लो होती है, एक की एनर्जी दूसरे के पास जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट एनर्जी फ्लो होती है वो नेत्रों के माध्यम से। और एक तपस्वी आत्मा जब सारा दिन श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों में होता है तो उन विचारों को वो अपने नयनों में भर के रखता है, उस ताकत को भर के रखता है। और उस नयन से जब वो किसी को देखता है तो सामने वाले को भी शक्ति का आभास होने लगता है। तो इस तरह से हमें आंख खोल करके बैठना है। अपने आसपास के वातावरण को भी जब हम मेडिटेशन करें तो साफ सुथरा, नीट क्लीन, स्वच्छ बनाकर रखें। कई बार सुगंधित अगरबत्ती का भी हम उपयोग कर सकते हैं, उस वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए। लाइट म्यूजिक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं उस वातावरण को बनाने के लिए जो हमको मेडिटेशन में सही हो। तो बाह्य रूप से तो हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हमें क्या करना है? मानसिक रूप से हमें, जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव, पर्सनल और प्रेजेंट। मानसिक रूप से हमें इस बात को ध्यान में रखना है, इस समय मेरी परमात्मा के साथ पर्सनल मुलाकात है ना। आपकी किसी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, किसी बड़े के साथ, तो आप ऐसा दरवाजा बंद कर लेंगे, किसी और को अंदर आने नहीं देंगे। अभी मेरी उनके साथ पर्सनल मीटिंग है। तो जब मेडिटेशन में हमें आंतरिक रूप से तैयारी करनी है इस संकल्प के साथ कि मैं संसार की सर्वोच्च सत्ता के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं, जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ मेरी पर्सनल मुलाकात है, कितनी खुशी होगी, कितना आनंद आएगा। और प्रेजेंट हुआ, पर्सनल हुआ, लेकिन मन को सकारात्मक संकल्पों के साथ योग में बिठाना है। अगर दुख के विचारों के साथ हम बैठेंगे तो कभी हम मेडिटेशन कर, उदास होकर के बैठेंगे तो कभी मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे। पर मन को सकारात्मक विचारों के साथ, मन को समझाकर, अभी तुम कौन सी यात्रा पर जा रहे हो, किस यात्रा पर जा रहे हो, आपको वहां से क्या मिलने वाला है, कौन सी शक्ति मिलने वाली है, जब मन को आप बिल्कुल खुशनुमा बना दोगे, अपना साथी बना दोगे, तो आपको मन जो है इस यात्रा में बहुत अच्छे से साथ देगा। तो हमें स्थूल भी तैयारी करनी है और सूक्ष्म बहुत खुशी खुशी से अपनी यात्रा को करना है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मन को शून्य कर दें तो ध्यान लग जाए, श्वास पर मन को एकाग्र कर दें तो ध्यान लग जाए, कोई मंत्र में अपने आप को टिका दें तो ध्यान लग जाए। नहीं, मन जो है कभी शून्य होता नहीं। होता है, अभी भी दौड़ रहा है, उसकी तो आदत ही क्या है, दौड़ने की। मन को शून्य नहीं कर सकते, पर मन को हम चैनलाइज कर सकते हैं सकारात्मक दिशा में। आप सही दिशा दे करके उसको उस दिशा में ले जा सकते हैं, पर उसको हम रोक नहीं सकते, शून्य जीरो नहीं कर सकते। और अगर हम कहें श्वास पर मन को एकाग्र करें तो ध्यान लगेगा, पर जैसे पहले भी कहा कि मन के विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, न कि शरीर का प्रभाव मन पर। मन सारा दिन इस तन के साथ बातचीत करते हैं। जब बहुत विचार तेज होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। जब मन के विचार शांत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो हमारी श्वास प्रणाली भी कैसी होती है, नॉर्मल शांत होती है। तो जैसे जैसे विचार, वैसे वैसे शरीर के ऊपर उसकी इफेक्ट। और अगर कहें कोई मंत्र में मन को टिका दें, तो मंत्र क्या है, मन प्लस त्र, ये दो अक्षर से बना है। त्र अर्थात त्राण, सुरक्षा देने वाला, मन को प्रोटेक्ट करने वाला मंत्र। लेकिन एक ही एक मंत्र का आप रोज रोज उपयोग करते रहेंगे तो मन को भी क्या चाहिए, जैसे हमको रोज पहनने के लिए नए कपड़े, अलग कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोज वैरायटी चाहिए, ऐसे मन को भी, मन का भोजन क्या है, विचार। तो मन को भी कैसे विचार चाहिए, आप एक ही एक विचार रोज 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 देते रहोगे तो भटकेगा, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन आप सुंदर सुंदर विचारों में मन को भ्रमण कराएंगे तो क्यों नहीं मन वहां पर टिक जाएगा। आज हम सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं सैर करने के लिए, जंगल में या गार्डन में? हाँ, यहाँ भी आप सैर करते हैं तो कहाँ सैर करते हैं, गार्डन में सैर करते हैं, पवित्र वातावरण में। तो मन के विचारों को भी मुझे सकारात्मक दिशा में सैर कराना है, जंगल में नहीं। जंगल व्यर्थ विचार है और गार्डन समर्थ सकारात्मक विचार है। तो मुझे ऐसे सुंदर विचारों का भोजन मन को देना है। और जहां इस तरह से मन सकारात्मक बन जाता है तो मन शक्तिशाली भी बनता है और परमात्मा से कनेक्ट होना भी उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो चलें थोड़ी देर हम अभ्यास करते हैं। कैसे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, आंख खोल के, और तन को कैसा रखेंगे, स्थिर रखेंगे। हाथों को कैसे रखेंगे, फोल्ड करके रखिए। कमर को, कंधे को, सब को स्थिर कर दीजिए। किसी की भी आंखें बंद ना हो, कैमरे में कैद हो रही है, आंखें खोल करके बैठे। और जो विचारधाराएं आप सभी को दी जाएं, उस विचार से मन की सैर करेंगे, परमात्मा से मिलन मनाएंगे। एकाग्र होकर चारों तरफ से अपने ध्यान को इस पवित्र वातावरण में केंद्रित कर लें। इस तन में मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हो, शांति का निर्मल बिंदु हो, पवित्र हो, प्रेम स्वरूप हो, मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। संपूर्ण कर्म इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण है। इस पल ये सारी इंद्रियां शांत होकर बैठी हैं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी होकर एक आध्यात्मिक यात्रा पर जा रही हूं। जिस यात्रा में परमात्मा पिता मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ऐसे मैं अपने सामने अपने पिता उस ज्योति बिंदु को देख रही हूं। जो गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, अनुभव की धारा में बहते हुए महसूस करें, परमात्म शक्तियों का प्रवाह निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। और मैं आत्मा उस गुण और शक्ति के प्रवाह से आनंदित महसूस कर रही हूं। मेरे मन के सारे बोझ उस पिता को समर्पित करते हुए अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूं। मेरा जीवन कितना खुशनुमा बन चुका है, हल्का हो चुका है। राजयोग की इस सुंदर यात्रा में मैं स्वयं को पूरी तरह से परिवर्तित महसूस कर रही हूं, प्रसन्न चित्त महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे सुखद यात्रा करते करते पुनः लौट आए इस देह में मस्तक के बीच, ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र एनर्जी को अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर और पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे, दिल से परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।